शान निया को अपने करीब आने से रोक रहा था, पर निया नहीं मान रही थी। निया एक बार फिर उसके करीब जाने लगी तो शान ने तुरंत ही उसके लबों से ड्रिंक का ग्लास लगा दिया और उसको अपने हाथों से ड्रिंक पिलाते हुए बोला, बहुत बेताब लग रही हो, लगता है अर्जुन तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका। इट्स ओके, जब तुम्हारी मंजूरी है तो तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों को आज की रात मैं पूरा कर दूंगा, पर उससे पहले थोड़ी ड्रिंक हो जाए, इतनी बड़ी खुशी है तो सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। शान ने बात को ऐसे घुमाया कि निया उसमें उलझ कर रह गई और उसने खुशी खुशी ड्रिंक पीनी शुरू कर दी। शान भी उसके साथ ड्रिंक पीने का नाटक करने लगा। निया ने एक पूरी बॉटल खाली कर दी और अब उसको नशा चढ़ने लगा था। उसने अब ग्लास नीचे रखा और शान के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, कितना दिलफरेब चेहरा है तुम्हारा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। निया उसके लबों को चूमने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, शान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसका यूं नज़दीक आना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा, यहाँ नहीं, रूम में चलते हैं। उसकी बात सुनकर नशे में टुल निया तुरंत ही उसके साथ चल पड़ी। जाते हुए शान ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो रेहान ने मुस्कुराकर अपना अंगूठा दिखाते हुए उसको डन का इशारा कर दिया। शान निया को लेकर आगे बढ़ गया। रेहान से कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने एक हट्टा खट्टा आदमी बैठा था और उसकी निगाहें भी शान और निया पर जमी हुई थीं। साथ ही अपने हाथ में मौजूद फ़ोन पर वो लगातार उनकी तस्वीरें खींच रहा था। वहीं ठाकुर मेंशन में अर्जुन के कमरे में इस वक्त हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे में सोफे पर बैठे अर्जुन की नज़रें अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उंगलियां उन पर आती तस्वीरों को स्क्रॉल कर रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और स्क्रीन पर निया और शान की तस्वीरें शो हो रही थीं, जिसमें दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। शान जब निया को खुद से दूर कर रहा था उसकी भी फ़ोटो थी। वहाँ इतनी देर में जो भी हुआ सब तस्वीरों के रूप में अर्जुन देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। शान निया को उस प्राइवेट रूम ले गया जिसे उसी ने बुक किया था ताकि अपने मकसद को अंजाम दे सके। रूम में आते ही निया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर शान के सीने से लग गई। उसकी हथेली शान की पीठ पर घूम रही थी। कुछ देर उसके सीने से लगे रहने के बाद निया उससे अलग हुई और लालसा भरी निगाहों से उसको देखते हुए उसके कोट को उतार दिया। फिर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए वो अपनी हथेली को उसके सीने पर घुमाते हुए उसके नज़दीक जाने लगी। शान के तो तन बदन गुस्से से जल रहा था। वो अपने जबड़े भींचे हुए किसी तरह ये सब बर्दाश्त कर रहा था। शायद किसी चीज़ का इंतज़ार था उसे। वो एकदम खामोश खड़ा था जबकि निया अब बेतरतीबी से उसके सीने और गर्दन को चूमने लगी थी। उसकी नशीली आंखों में अलग ही चमक थी इस वक्त। आज वो कुछ बड़ा करने वाली थी और अब वो और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इतने वक्त से शान के पीछे भागने के बाद उसको ये मौका मिला था जिसका वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की फिराक में थी। उसने शान को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके बदन और चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। शान ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपना चेहरा फेर लिया पर उसको हटाया नहीं। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि निया शान के ऊपर ही गिर गई। उसकी आंखें अब बंद थीं। शान ने तुरंत उसको दूसरी तरफ झटकते हुए खुद के ऊपर से हटाया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने झट से अपने शर्ट के बटन लगाए और ज़मीन पर पड़े प्लेजर को उठाते हुए वहां रखे वास के तरफ पड़ गया। उसने उसके अंदर छिपाए कैमरे को निकाला और एक बार पीछे बेड पर बेहोश पड़ी निया को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए वो तेज़ कदमों से रूम से बाहर निकल गया। नीचे पहुंचा तो रेहान तुरंत उसके पास आ गया। शान ने उसके तरफ उस कैमरे को बढ़ा दिया। रेहान ने उसे ले लिया, फिर शान के चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए कहा, तू ठीक है? शान ने उसके तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आगे का काम मैं संभाल लूंगा, तू घर जा, बहुत स्ट्रेस्ड लग रहा है। आज जो तूने किया है वो तेरे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, तो घर जाकर आराम कर। सब काम हो जाना चाहिए और एक बार आगे से बेहोशी की दवाई इतनी पावर वाली लाइयो कि खाने के 5 मिनट के अंदर बंदा बेहोश हो जाए। इतने धीरे से असर करने वाली दवाई अगर दोबारा लगाया तो तू गया काम से, समझ लेना। शान ने उसको धमकी दी और आगे बढ़ा। तभी पीछे से रेहान, जो उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान था, उसने एकाएक कहा, इतना गुस्सा, कहीं आज तेरी इज्जत तो नहीं लूट गई? रेहान इतना कहकर हंस पड़ा। वहीं शान के कदम एक पल को रुके पर फिर उसने आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहा, मेरी तो नहीं, पर अगर तूने अपना सड़ा हुआ मुंह बंद नहीं किया तो तेरी इज्जत लुटने से कोई नहीं बचा पाएगा।
वो गुस्से में तेज कदमों में वहां से चला गया। अब पीछे खड़ा रेहान एकदम से सीरियस हो गया और वो भी उसके पीछे चला गया। शान अपनी गाड़ी में बैठा, फिर सीट पर सिर टिकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर आए घृणा के भाव ये बताने के लिए काफी थे कि निया का उसके यूं करीब आना उसको बिल्कुल रास नहीं आया है। उसका शरीर भट्टी सा तप रहा था, सीने में ज्वालामुखी धधक रहा था, पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इतनी देर से बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने गुस्से को काबू में किया हुआ था, पर अब गुस्से से उसका दिमाग फट रहा था। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आरवी का मासूम सा चेहरा आ गया, जिसकी आंखों में उसके ही जैसी बेचैनी झलक रही थी। चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिकायत कर रही हो कि उसकी पत्नी तो वो है, उसके करीब आने का हक सिर्फ उसका है, उसे छूने का अधिकार सिर्फ उसे है। फिर उसने कैसे एक गैर लड़की को अपने इतने करीब आने दिया। शान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारा। आरवी की नाराजगी उसके दिल को और बेचैन करने लगी। अंदर सीने में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होने लगा। रह रहकर अब उसके जहन में आरवी का ख्याल आ रहा था कि उसने आज उसको चीट किया है। अगर आरवी को ये सब पता चला तो उसका भरोसा ही टूट जाएगा। बेचैनी और तरप से वो व्याकुल हो गया। जाना तो घर था, पर उसने गाड़ी आरवी के घर की तरफ घुमा दी। घंटों वो आरवी के घर के सामने अपनी गाड़ी लगाकर एकटक उसके घर के दरवाजे की तरफ देखता रहा, जो बंद था। दिल तो अंदर जाने का कर रहा था, पर दिमाग इनकार कर रहा था, और वो दिल और दिमाग के बीच उलझा हुआ था। रात का वक्त था, सभी खा पी कर अपने अपने घरों में सो रहे थे। सड़क सुनसान थी और उस अंधेरी सड़क पर बस स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी थी। रात के 11 बज गए थे, पर आरवी की आंखों में नींद का नामोनिशान तक नहीं था। जब से रश्मि से बात हुई थी और उसे एहसास हुआ था कि उसको शान से प्यार हो गया था, तभी से अजीब सी बेचैनी को महसूस कर रही थी वो। धड़कने कभी तेज धड़कती तो कभी एकदम से थम जाती। जहन में बस शान बसा हुआ था, जिसने आज भी उसे फोन नहीं किया था, जिस वजह से वो और ज्यादा बेचैन थी और बस बेचैनी से यहाँ से वहाँ करवट बदले जा रही थी, जबकि उसके बगल में सोई अंशु बड़े आराम से सो रही थी।
अचानक ही उसका फोन बजने लगा तो वो तुरंत हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। जल्दी से फोन उठाकर उसकी साउंड बंद की ताकि उसकी आवाज से अंशु की नींद न खराब हो। उसके बाद उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो एक पल को उसकी धड़कनें रुक सी गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी वो शान के ही बारे में सोच रही थी और अब उसका फोन आ रहा था। ये उसके लिए किसी सदमे से कम तो नहीं था। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए हैरान परेशान सी मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रही थी। शायद विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही। ये हकीकत है, शान उसे फोन कर रहा है। कुछ सेकंड बाद भी जब स्क्रीन पर मल्होत्रा साहब शो होता रहा, तब जाकर उसने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कॉल रिसीव करने फोन कान पर लगाया और धीमी सी आवाज में बोली, हेलो, बालकनी में आओ अभी, इसी वक्त। दूसरी तरफ से शान की कड़क आवाज आई। उसकी बात सुनकर आरवी पहले तो चौंक गई, फिर उसकी बात का मतलब समझते ही वो दौड़कर बाहर बालकनी में आई और नीचे झांका। वहां जलती स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी में जब उसने सड़क पर अपनी गाड़ी से टेक शान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप यहां इस वक्त? आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। आपको तो अभी घर पर होना चाहिए था, फिर यहाँ? आरवी ने हैरानी एक ही सांस में बाद एक सवाल किए जा रही थी और आंखें फाड़े नीचे खड़े शान को देखे जा रही थी।